मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजू जहाँ में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।
ओम शांति। फल बेचने वाले एक व्यक्ति के पास एक चालाक लोमड़ी थी और वो फल बेचने वाला व्यक्ति जब भी कहीं बाहर जाता था तो लोमड़ी से कहता था कि तुम्हें अलर्ट रहना है, जागते रहना है। जरा भी तुमने यदि देखा कोई आवाज़ कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, मेरी अनुपस्थिति में कोई भी हलचल हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, ज़रूर कोई फल चुराने आया है, तो तुम आवाज़ करना। उसका घर पीछे ही था तो कहता था जब भी मैं घर में अंदर जाऊं तुम पहरे पर रहना, अलर्ट रहना, सोना नहीं। एक दिन एक चोर ने उस व्यक्ति को उस लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। फिर जैसे ही मौका आया वो व्यक्ति अंदर गया घर के, वो फलों की दुकान में लोमड़ी ये व्यक्ति गया और वहां जाके बैठ गया। लोमड़ी ने सोचा, मैं आवाज करूं, परंतु आवाज क्यों करूं? ये व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, केवल बैठा है। और थोड़ी देर के बाद वो जो चोर था वह एक्शन करने लगा सोने की, कि उसे नींद आने लगी। लोमड़ी को निर्देश दिए गए थे कि जब कोई क्रिया हो, एक्टिविटी हो, कोई हलचल हो, कोई संदेह वाली घटनाएं हो, संदेहास्पद हो, तब आवाज करना है, तब चिल्लाना है और मालिक को बुलाना है। पर यहाँ संदेहास्पद कुछ है नहीं। ये व्यक्ति आया है और चुपचाप बैठा है और चुपचाप अब सो रहा है। वो व्यक्ति सोने की एक्टिंग करता है, पर लोमड़ी चुप रहती है। और धीरे धीरे लोमड़ी को कब नींद लग जाती है पता नहीं चलता है। जब मालिक आता है और फिर लोमड़ी भी जागती है तो फल गायब। मालिक पूछता है, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको कहा था अलर्ट रहना है, जागे हुए रहना है, सोना नहीं है। क्या कोई ऐसी घटना घटी थी? वो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या आपको जगाऊं? संदेहास्पद कुछ हुआ ही नहीं। आखिर हुआ क्या? एक व्यक्ति आया, पर वो केवल बैठा था, और बैठना कोई क्रिया नहीं है। वो केवल सो रहा था, और सोना कोई एक्टिविटी नहीं है। और फिर उसको देखते देखते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो जैसे एक जागता है तो सब जागते हैं, उसी तरह एक को नींद आने लगती है तो उसे देखकर सबको नींद आने लगती है। उस व्यक्ति ने लोमड़ी से ये नहीं कहा कि तुम सो जाओ, केवल लोमड़ी को देखते देखते, उस व्यक्ति को देखते देखते ही लोमड़ी को नींद आ गई। और नींद भी कैसी आई, गहरी नींद। वो ये नहीं जान पाई कि ये व्यक्ति जो यहाँ शांति से और बैठा है ये ठग है। ये जो नींद का नाटक, ये नींद जो है ये नाटक है। और चोर चुरा ले गया। जब घर का मालिक जागता है तो चोर आ नहीं सकता, पर यदि घर का मालिक सो जाए तो चोर चोरी करके ले जाता है। तो हमारे घर का मालिक जाग रहा है या सो रहा है? माया भी आती है उसी व्यक्ति की तरह, वो भी बैठती है, वो भी नाटक करती है कि मैं तो खत्म हो चुकी हूं, मैं तो सो रही हूं। और चोर को सोते हुए देख मालिक भी क्या हो जाता है, निश्चिंत, और सो जाता है। और जैसे मालिक सो जाता है वैसे क्या हो जाती है, चोरी। सावधानी जैसे ही हटती है दुर्घटना घटती है। अध्यात्म का एक ही सिद्धांत है, जागरण, जागो। पिछली या उससे पहले जो भट्टी हुई थी उसमें हमने वैराग्य दिंडिमा के सूत्र देखे थे और कहानी भी देखी थी उससे संबंधित, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। वो जो मूर्ख दिखने वाला बच्चा होता है, उसके पिता चले जाते हैं, ये सब सुना है। रात में उसकी ड्यूटी लगती है पहरे की, वो मूर्ख समझा जाता है और वो रात भर गाते रहता है और लोगों को जगाते रहता है। और राजा जब नज़दीक आकर सुनता है तो इतना गुह्य ज्ञान उसमें भरा होता है। आशा बद्यते लोकम कर्मणा बहु चिंतया आयु क्षीणम न जनाति तस्मात जागृत जागृत जागृत। लोक इस दुनिया में, लोग इस दुनिया में इच्छा है कार्यों और कई गुना चिंताओं से बंधे, इसलिए वे नहीं जानते कि जीवन धीरे धीरे क्षय होता है। और व्यर्थ हो रहा है इसलिए जागो उठो तस्मात जागृत जागृत। जीवन खत्म हो रहा है हर दिन हर बर्थडे हमें किधर ले जा रहा है डेथ डे की तरफ। देह में चोर छिपे हैं जैसे काम क्रोध और लोभ ज्ञान को ये रत्नों को चुराने के लिए इसलिए तस्मात जागृत जागृत जागृत। कामक्ष क्रोधाक्ष लोभाक्ष देहे तिष्ठान्ति तस्कर ज्ञान रत्न प्रचाराय तस्मात जागृत जागृत जागृत। एक एक विकार एक एक चोर है ठग है महाठग पांच महाठग पांच पुराने दुश्मन पांच विकार पांच चोर। स्वास्थ्य और धन स्वप्न के समान है आज है कल नहीं। चिलचिलाती धूप को देखते ही फूल की तरह मुरझा जाते हैं। दिन ब दिन हम इस शरीर के अंतिम दिनों के करीब पहुंच रहे हैं इसलिए जागृत जागृत जागृत। जीवन कभी भी नष्ट हो जाएगा। इस संसार में एक ही चीज निश्चित है। कौन सी? इस संसार में एक ही चीज निश्चित है। ओनली वन थिंग इज सर्टन। कौन सी? अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। इस संसार में एक ही चीज है तो संपूर्ण सर्टन है वो है अनसर्टेनिटी। यहां कुछ भी भरोसा नहीं। अभी अभी जो व्यक्ति ठीक है दूसरे क्षण वो पागल हो जाता है। अभी अभी व्यक्ति बहुत अच्छा है बीमार। अभी अभी बहुत खुश दूसरे पल उदास। अभी अभी हम सोचते हैं इससे हमको कितना प्यार करता है ये दूसरे क्षण धोखा। फ्लक्चुएटिंग है सारा अनित्य है। अभी अभी ज्ञान के अनुभव सुनाते हैं हमको इस ज्ञान से ये मिला वो मिला ऐसा हुआ वैसा हुआ हम बाबा के बन गए अगले दिन गायब टाटा बाय बाय सेंटर में आना ही बंद। संडली पर बैठकर अनुभव सुनाने वाले है नहीं। जिन्होंने बाबा से सम्मुख टोली ली वो रफु चक्कर जो अनन्य थे खून से लिख के देने वाले सब गायब। स्वास्थ्य धन स्वप्न की तरह है। चिलचिलाती धूप को देखते ही फूल की तरह मुरझा जाते दिन ब दिन हम इस शरीर के अंतिम दिनों की तरफ करीब पहुंच रहे इसलिए विद्युत चंचलम आयुष्यम तस्मात जागृत जागृत जागृत। तुम्हारे पास कोई माँ नहीं है। कौन माँ किसकी माँ? तुम्हारे पास कोई पिता नहीं है। कौन पिता किसका पिता? कोई रिश्तेदार नहीं है। माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरा है। कोई रिश्तेदार नहीं कोई भाई नहीं कोई धन नहीं कोई घर नहीं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मृत्यु के बाद कुछ भी आपका पीछा नहीं करेगा इसलिए तस्मात जागृत जागृत जागृत। ये सारे बंधन है ये माँ ये बहन ये पिता ये भाई ये रिश्तेदार चाचा मामा काका नानी बहुरानी बुआ जेठानी देवरानी सास ससुर दादा दादी नाना नानी पोता पोते भैया भाभा भाभी बच्चे मुंह बोली बहन मुंह बोला भाई माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सर्वदा अर्थो नास्ति गृहम नास्ति तस्मात जागृत जागृत जागृत। कहाँ बंधनों में फंसे हो किसको क्या बोल रहे हो ये मेरा वो मेरा ये मेरा मेरा परिवार मेरा पति मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा ये परिवार हमको सब कुछ मिलना चाहिए सारी वस्तुएं हमें मिलना चाहिए सारा धन मेरे परिवार को मिलना चाहिए मेरी बेटी को सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कौन बेटी किसकी बेटी? माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सर्वदा सहोदर आय नास्ति अर्थो नास्ति कोई धन नहीं है, गृहम नास्ति कोई घर नहीं है, तस्मात् जागृत जागृत जागृत। वैराग्य की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत ही तब होगी जब जीवन में वैराग्य का उदय होगा। सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगेगा, संसार के सारे रिश्ते, सारे संबंध, सारा धन यहां का व्यर्थ नजर आएगा। मिट्टी, हाथों में सोने के सिक्के, हाथ बंद मिट्टी, हाथ खोलो सोने के सिक्के, हाथ बंद मिट्टी, दोनों ही सेम। वस्तुओं से प्यार, वस्तुओं से आसक्ति, कहाँ कहाँ फंसे हैं। जन्म दुखम जरा दुखम जय दुखम पुनः संसार सागर दुखम तस्मात जागृत जागृत। जन्म दुख से भरा हुआ है, मृत्यु बुढ़ापा दुखों से भरा है, जीवन साथी बार बार सभी दुखों और पीड़ाओं का स्रोत है जीवन साथी। संसार का यह सागर दुखों से भरा है, किधर फंसे, किसको अपना कहे, सारे बंधन ही बंधन। इसलिए तस्मात जागृत जागृत जागृत, यही सार है। इस संसार को देखते हुए इस संसार की अनित्यता का चिंतन, अनित्य है, क्षणभंगुर है, भंगुर है, विनाशी है। मुरलियों में एक ही चीज बार बार आती है, जो कुछ देख रहे हो वो कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, कौन देगा किसको कंधा। इसलिए जागृत जागृत जागृत। आज की व्यक्तवाणी 10/9/75। इसी मंथ में कोई बहुत बड़े फ्लड्स आया था इंडिया में भी बाहर भी, 75 सितंबर 75, उसका भी इस अगली मुरली में वर्णन है। तो पहली मुरली क्या कहा, पहली मुरली में कल सुना है सबने, कौन हो तुम, नॉलेजफुल पावरफुल, और ये होगा तो क्या होगा, सक्सेसफुल। और ये सक्सेस कब, भविष्य के लिए नहीं, ये ज्ञान तो भविष्य के लिए, हम भविष्य में प्रख्यात होंगे, अब नाउ हियर एंड नाउ, ये नियम है, ये लॉ है संगम युग का। प्रत्यक्ष कहाँ होंगे, अभी। प्रत्यक्ष फल कहाँ मिलेगा, अभी। भविष्य का फल नहीं, भविष्य की जीवन मुक्ति नहीं, अब की जीवन मुक्ति। भविष्य की खुशी नहीं, अभी की खुशी। भविष्य का 16 कला संपूर्ण नहीं, अब का 16 कला संपूर्ण स्वरूप। भविष्य का सोच के करना भी तो वो तो खाली टेम्पटेशन है एक। अभी 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 सेवा, अभी अभी खुशी। बाबा ने कहा है एक ईश्वरीय नियम लॉ है, संगम युग की विशेषता, बाप प्रख्यात, बच्चे प्रख्यात, ब्राह्मण प्रख्यात, 84 जन्मों की ये कहानी प्रख्यात, ये ज्ञान प्रख्यात, ये 4 विशेषताएं संगम युग की। तो प्रख्यात अभी होना है, कोई कोई बच्चे सोचते हैं हम बाद में प्रख्यात हो गए, अभी हम गुप्त है, अभी लास्ट में होंगे, लास्ट में नहीं, अभी जो कर रहे हैं उसका फल अभी मिलना चाहिए। रामायण में दिखाया है, रामायण का युद्ध पूरा हुआ, रावण पराजित हुआ, रावण की हार हो गई, रावण की मृत्यु हो गई। रामायण के युद्ध के बाद श्री राम विभीषण को राजा बनाते हैं। विभीषण कहता है मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे राजा नहीं बनना है। मैं क्यों राजा बनूं? मुझे आपके साथ चलना है। मैं आपकी सेवा करूंगा अयोध्या में। तो राम ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा? राम एक तर्क देता है विभीषण को कि तुम्हें यही रहना है और राज्य करना है। क्यों? तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? नहीं। क्यों? विभीषण कहता है मुझे वैराग्य है, मुझे नहीं चाहिए ये सोने की लंका, मेरे कोई काम की नहीं है। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपके चरणों में रह के। मुझे नहीं चाहिए। क्या उत्तर है? मेरा आदेश नहीं, नहीं। कर्म बंधन नहीं, ये मुरली से संबंधित नहीं, नहीं ये इस मुरली से संबंधित। श्री राम कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो सूक्ष्म प्राप्तियों को थोड़ी देखते, स्थूल प्राप्तियों को देखते। वो क्या कहेंगे, विभीषण ने राम के साथ दोस्ती की, उसे मिला क्या इन रिटर्न? राम के साथ, श्री राम के साथ दोस्ती का रिटर्न भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये राज्य मिला, इसलिए तुम यहीं रहो। स्थूल प्राप्ति है, सूक्ष्म प्राप्ति तो कुछ और है, पर अज्ञानी लोग तो सूक्ष्म प्राप्ति देखते ही नहीं। अज्ञानियों के लिए जो प्राप्ति है वो ज्ञानियों के लिए अप्राप्ति है। ज्ञानियों के लिए जो प्राप्ति है वो अज्ञानियों के लिए अप्राप्ति है। ज्ञानी कहते हैं मूर्ख है, देखो कितना पैसा कमा सकते थे दुनिया में, क्या कर रहे हैं यहां पर झाड़ू लगा रहे हो। जो उनके लिए अप्राप्ति है वो यहां प्राप्ति है, और जो यहां अप्राप्ति है वो उनके लिए प्राप्ति है। ऐसा उल्टा है मैथमेटिक्स। इंग्लिश में एक किताब है द फैमिली दैट ओवरटूक क्राइस्ट, एक परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे चला गया। उस परिवार में 7 लोग हैं, 7 बच्चे। पहला भाई जो होता है उसे वैराग आ जाता है, वो सन्यास ले लेता है, चर्च में चला जाता है, समर्पित कर देता है खुद को। दूसरा जो होता है वो भी वैसा ही। तीसरा तो बहुत, वो सेंट है, सेंट बर्नार्ड, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स। वो इन सभी में से सबसे महान दिखाया हुआ है, जिसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, उसके लिखे हुए लेटर्स प्रभु को, ओ क्राइस्ट वगैरह वगैरह, वो बहुत है। तो एक एक करके सारे 6 के 6 भाई चर्च में चले जाते हैं, वहां पर पूर्ण अर्पित कर देते। और जो छोटा भाई होता है निनाड, उसको कहते हैं ये जो घर गृहस्थी जो है ना, जमीन है इतनी बड़ी, पूछते हैं नहीं, तुम इसको देख लेना। हम तो जा रहे हैं। एक एक करके सब चले जाते। उसको कहते हैं ये छोटा है अभी, इसको ज्यादा समझ नहीं है, इतना इसको पता नहीं है, तो ये अभी से ये संभालने लगेगा ना, पूछते हैं नहीं जमीन खेती बाड़ी, तो इसमें बिजी हो जाएगा। और वो जो छोटा होता है वो कहता है यू टुक द हेवन एंड गिव मी द लैंड, तुमने स्वर्ग लिया और मुझे धरती देते हो, मैं भी आ रहा हूं। द फैमिली दैट ओवर टुक क्राइस्ट, वो परिवार जो क्राइस्ट से भी आगे चला गया, त्याग में, तप में, वैराग्य में। तो संगम युग का प्रत्यक्ष फल कहां है? संग प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल, 2 लड्डू है तुम्हारे हाथों में, अभी अभी ये भी है और वो भी है। ये नहीं कि ये नहीं चाहिए मुझे मैं तो वो लूंगा, सूक्ष्म में दोनों ही है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल, सफलता, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, यही है सक्सेस। अभी अभी खुशी करो, और अभी अभी खुशी, सेवा करने के बाद खुशी किसको होती है? जिसने की उसको तुरंत, या बाद में होती है? नहीं, सुबह सुबह 2 बजे उठ जाओ और अमृत वेला बहुत पावरफुल करो, खुशी किसको होती है? दूसरों को या हमको? किसी दिन पूरे मुरली का गहन चिंतन करो, किसको खुशी होती है? हमको। मुरली में इतना खो जाओ कि उसमें नए रहस्य प्रकट हो जाए, खुशी किसको होती है? हमको। दादी प्रकाशमणि का अनुभव है कि उन्होंने कहा कि जिस दिन पहली बार मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन उसी क्षण मुझे दुनिया भूल गई. एट दैट वेरी मोमेंट आई फॉरगॉट द वर्ल्ड. उसी क्षण मुझे दुनिया भूल गई. तो संगम युग पर हम जो भी करते हैं, किसी आत्मा का कल्याण कर लो, कि कोई भटक रहा है उसको राह दिखा दिया. बाबा ने कहा है ना, तुम त्रिनेत्री हो, तुम निरोगी बनाने वाले हो, भूतों को वश में करने वाले हो, भटकने वाले को राह दिखाने वाले, ठिकाने देने वाले, जो अंधे हैं उनको तीसरा नेत्र देने वाले हो, अकाले मृत्यु बचाने वाले हो, लंबी आयु करने वाले हो. वो सारी सिद्धियाँ हमारी सिद्धियाँ. तो वो जो सामने वाली आत्मा है उसको कैसी खुशी होती है. कोई रोगी है और उसको कोई ठीक कर दे, रोग से मुक्त कर दे, कितनी बड़ी खुशी होती है उसको, कितनी उसकी दुआएं मिलती है. वो कुष्ठ रोगी था, पड़ा हुआ था, वो शिरडी में दिखा है ना, साई चरित्र में एक व्यक्ति था, रानो जी, घर परिवार में रहता था. अचानक एक दिन देखता है शरीर पर दाग है. वो कहता है दाग क्या है ये, समझ नहीं आता है उसे. वैद्य के पास जाता है, लोकल डॉक्टर. वो कहता है अरे चुभ रहा है क्या तुमको. ये बात कब की है, 1910 के आसपास की, मतलब उस तब तक. वो कहता है ये तो कुष्ठ रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, अब तक इलाज है ही नहीं, इम्पॉसिबल. और ये बात आग की तरह शहर में फैल जाती है. उसकी पत्नी, उसकी उसका भाई, भाई की पत्नी, भाभी, घर से निकाल देते हैं उसके कपड़ों को ऐसे ऐसे फेंक के. उसकी पत्नी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, वो भी पीछे हट जाती है, वो भी नहीं आती है कावेरी, वो सारे पीछे, सारा गांव उसको ये कर देता है, कंबल लेके घूमते रहता है. यहां पर योगी के संपर्क में आता है, साई के संपर्क में, वो साई बाबा उसका इलाज करते हैं, जो कि असंभव था उस समय कुष्ठ रोग. और उसी समय उस एरिया में प्लेग आता है, द ग्रेट प्लेग. उस समय डॉक्टर्स ब्रिटिश डॉक्टर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशों की हुकूमत थी इवन शिरडी पर भी. तो दिखाया है कि इसको भी पकड़ के लेके आते हैं वो जो कुष्ठ रोगी होता है, क्योंकि ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये लोग छिपा के रखते हैं, नहीं बताते हैं उनको. पर ये जब दिखता है उसको पकड़ के लेके आ जाते हैं, और तब तक वो ठीक हो चुका होता है. और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स कहता है, ऑफिसर देखता है उसको, तुमको क्या है. वो कहता है कुष्ठ रोग. तो वो ब्रिटिश डॉक्टर उसको चेक करता है, कुष्ठ रोग है ही नहीं, ठीक हो गया. वो समाज उसको रिजेक्ट कर देता है, उसका सब हुक्का पानी सब बंद. ऐसी स्थिति में पत्नी छोड़ देती, भाई भाभी सब निकाल देते हैं, गांव वाले तिरस्कार करते हैं. ऐसी अवस्था में कोई अगर उसका इलाज करे तो कितनी दुआएं उसको मिलती, उस वैद्य को. तो बाद में नहीं, अभी 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 की हुई, अभी अभी खुशी देना ही, अभी अभी दिया, अभी अभी मिला. ये है संगम युग. तो इस मुरली में बाबा ने कहा जिनस जिन सोया तिन खोया. तुम्हें जागना है. और माया क्या कर देती है, अज्ञान नींद में सुलाती है, मीठी नींद में सुला देती है, अलबेलेपन की नींद में सुला देती है. और ये लिस्ट बनाई है एक 12 लिस्ट, 12 पॉइंट्स की, ब्राह्मणों की निद्रा. बाबा ने कहा इस निद्रा से जागो, जागती ज्योत बनो. उदाहरण किसका दिया, ब्रह्मा का उदाहरण दिया. ब्रह्मा क्या था, अगर इस निद्रा से जागना है तो क्या बनना पड़ेगा, अथक. क्योंकि जब थकावट आती है तब नींद आती है, और फिर व्यक्ति सो जाता है, और नींद में बेहोशी में पाप होते हैं. जब कोई व्यक्ति जागा हुआ है और यहां गड्ढा है और उसको कहो यहां से चलो, गिरेगा क्या उसमें, नहीं, पर थोड़ा सा बेहोशी में है तब गिर जाता है, तो जब जागृत होते हैं तब नहीं गिरते। सबसे पहली निद्रा है ए आलस, अलबेलापन, आलस आता है, नहीं आज नहीं बाद में, एकदम डल। जैसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का आलस आता है, मुरली पढ़ने का आलस आता है, मुरली चिंतन का आलस, चिंतन बहुत, व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसा लगता कुछ नहीं कर रहा है, पर चिंतन थिंकिंग जो है ना सबसे कठिन काम है संसार का, चर्निंग थिंकिंग चिंतन करना, वो भी किसी विषय पर चिंतन करना। तो सबसे पहली नींद कौन सी है? आलस की नींद, अलबेलेपन की नींद। बाबा ने कहा है उस नींद की निशानी है उबासी, इस नींद की निशानी है उदासी। जब ये नींद आने लगती है, जब ये आलस आता है, तब क्या हो जाता है? मन उदास हो जाता है। अमृत वेला छूट गया तो छूट गया, मुरली नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, चिंतन किया तो नहीं किया, छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने वाला कोई है नहीं, बोलने वाला कोई है नहीं, पहले तो था कोई, अभी कोई कुछ नहीं बोलता है, जो करना है करो। अभी कौन किसको बोलेगा, वो टाइम चला गया, जिसको जो करना है वो करो। दूसरी नींद बहानेबाजी, बहाने करते रहना, और रॉयल बहाने, अच्छे वाले बहाने, प्रॉपर बहाने, योग युक्त बहाने, युक्ति युक्त बहाने। उस दिन भी सुनाया था ना, शिष्य गुरु शिष्य से कहता है देखना जरा बारिश आ रही है कि नहीं, वो कहता है गुरु जी अभी अभी बिल्ली बाहर से आई है, हाथ फिरा के देख लो पता चल जाए। गुरु जी कहते जरा लाइट तो बंद करना, दिया भी जाना मुझे सोना है। शिष्य कहता है गुरु जी आग बंद कर लो, दिया अपने आप बुझ गया समझ लो। गुरु जी कहते ठीक है चलो दरवाजा तो बंद कर लो आश्रम का, वो कहता है गुरु जी थोड़ा तो रहम करो, दो काम मैंने किए एक आप तो करो। बहाने बनाना, अलग अलग बहाने बनाना, नए नए बहाने बनाना, चिंतन कर करके बहाने बनाना। तो ये जो बहाने हैं, बहाने जैसे दो व्यक्ति है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या कोई झगड़ा हो गया या फिर और कुछ, या मन में क्रोध है या मन में रिवेंज की भाव है बदला लेने का, नाराज होना, ये जो अंदर बदले का भाव है, उस बदले के भाव को नाराज होने से ढकते हैं। अंदर बदला लेना है, अंदर क्रोध है, परंतु ऊपर से दिखा दे खाली नाराज, नाराज नहीं है, घृणा है, तिरस्कार है, बदला लेना है उसे। तो व्यक्ति जो होता है ना, ऊपर से कुछ बाहर से कुछ, वो पिज्जा पता है क्या आपको? पिज्जा खाया है? मनुष्य का स्वभाव उस पिज्जे की तरह है, वो जो होता है ना पिज्जा, वो जो आता है पैक, रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल होता है, बॉक्स को खोलो तो उसके अंदर फिर सर्कल होता है, और उसको खाने जाओ तो ट्रायंगल होता है। ऊपर से रेक्टेंगल ये, और जब खोलो डिब्बा आता है ना ऑनलाइन मंगाते हैं तो, फिर सर्कल, और जब खाने लगते हैं तो ट्रायंगल। तो मनुष्य भी ऐसा ही है, ऊपर से कुछ खोलो तो अंदर से कुछ, और खोलो तो कुछ और। सब अलग अलग है, ऊपर से जो दिख रहा है वैसा बहुत कम ही होता है व्यक्ति। तो दूसरा बहानेबाजी, तीसरा कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस अर्थात सुख और सुविधाएं, साधन सुविधाएं, ये नींद है। इतनी साधन, इतने साधन, इतनी सुविधाएं, सब कुछ प्राप्त है। इसलिए जहां साधनों की अति है, वैराग की क्षति है। वहां वैराग नष्ट हो जाता है धीरे 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 धीरे। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी ने जब आश्रम बनाया तो उसने दो नियम रखे थे अपने आश्रम के। ये पहला सन्यासी है क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में सन्यास है नहीं, परंतु जब सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी आया, उसने देखा कि ये जो पादरी है, ये जो पोप है, सब भोग विलास में डूबे हैं, कहीं नष्ट हो रहा है धर्म। जो क्राइस्ट ने बताया वो तो कर ही नहीं रहे। धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। व्यक्ति क्या करते हैं, धर्म को मानते हैं। हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, हम जैन धर्म के हैं, हम बौद्ध धर्म के हैं, धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। जो क्राइस्ट ने कहा वो कोई नहीं करता है, वो तो पैसरे ऐट रहे, नियम बना रहे, कुछ कुछ कर रहे, कर्मकांड सब कुछ कर रहे, ये खेल करो, वो करो, ऐसा करो, वगैरह वगैरह, सब भोग विलास में डूबे हुए। सेंट फ्रांसिस था, उसने जब पहली बार मोनेस्ट्री चालू की, उसमें दो ही नियम रखे उसने, एक चैस्टिटी, दूसरा पावर्टी, ब्रह्मचर्य और निर्धनता। ये नियम है, मतलब कोई भी सन्यासी के पास एक पैसा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां धन आ जाता है वहां पे माया चालू होती है। पर उसी के जीवन काल में दिखाया है, वो जब बाहर जाता है और जब वापस आता है, उसी के गुरु भाई कुछ कीमती वस्तुएं आश्रम में लाके रखे हुए। माया तभी से चालू हो गई थी उनको, तभी से मोह हो गया, आसक्ति हो गई। वो कहता है अब इस सबका पतन होगा धीरे धीरे। धन में प्रॉब्लम नहीं है, धन तो बहुत अच्छी चीज है, धन है तो बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता, पर उसके प्रति जो लोभ है वो प्रॉब्लमेटिक है। और उससे जो कंफर्ट्स आते हैं, ये साधना को खत्म कर देते हैं। एसी रूम में बैठ के अशरीरीपन का अभ्यास अच्छा होता है। ब्रह्मा बाबा बरसात के दिनों में वो टीन थी, वहां से टपकते रहता था पानी। बाबा को कहा कि बाबा ये इंद्र ये बन चुका है, ट्रेनिंग सेंटर तो बना नहीं था, बिल्डिंग बन, हाँ, तो बाबा को कहा आओ। आए क्या? नहीं, वहीं रहे। वो पानी की आवाज, टपकता हुआ पानी, कंफर्ट्स, ये नींद है। अगला दैहिक आकर्षण, डी, शरीर का आकर्षण, ये तो सबसे बड़ी नींद है। देह, देह के संबंध, देह की वस्तु, देह के पदार्थ, देह के भोग, देह की इच्छा, देह का देश, देह की भाषा, देह के वस्त्र, देह की सुंदरता, देह के, ये सब देह से संबंधित। दैहिक आकर्षण, देह का आकर्षण निर्माण हो जाता है। जैन धर्म में एक मुनि दिखाया है, नेमी कुमार, जैन भिक्षु, अत्यंत वैरागी। उसके जीवन में दिखाया, वो जब युवा था उसकी शादी हो रही थी और वो बहुत खुश था, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, आंखें बंद कर कर स्वप्न देखते रहता था, मैं, मेरी पत्नी, राजुल उसका नाम था। और जब ये सब चल रहा था, शादी का अवसर आया, सब कुछ हुआ, समारोह चल रहा है, लोग आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, और उसे अचानक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत करुण आवाज़। वो कहता है ये आवाज़ है कैसी है? उसे पता चलता है कि वो जो बलि चढ़ाने वाले हैं जानवरों की, समारोह, एज अ सेलिब्रेशन, शादी के मौके पर। वो कहता है क्या? वो जाके देखता है, इतने सारे जानवर बांधे हुए है, और तभी उसे एकदम से वैराग आता है, मेरी खुशी के लिए मेरी शादी हो रही है और इतने लोगों की बलि जाने वाली। तुरंत ही वैराग जागता है, इतना भयंकर वैराग, सारी वो सारे जानवरों को खोल देता है, और खोलते खोलते उसके अंदर की गांठें भी खुल जाती है, चित्त की, चेतना की, जन्म जन्म की, और ऐसा वैराग उदय हो जाता है कि वो सीधा उधर ही लग्न मंडप से ही गिरनार पर्वत की तरफ, बैराग उससे भी आगे जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो राजुल, वो देखती है कि ये चला गया, मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी उसके पीछे पीछे और भिक्षुणी बन जाती है, जैन साध्वी बन जाती है। ये जीवन हमको नहीं चाहिए, ये भोग विलास का जीवन है, हमें वैराग्य चाहिए, तपस्या चाहिए, उसी में ही परम आनंद है। वैराग्य सबसे बड़ा भाग्य है, वैराग्य सबसे बड़ा सुख है। आसक्तियों में बड़ी बेचैनी है, मेरा बेटा मेरी बेटी, उसके साथ कुछ होता है तो इधर कुछ होता है, बेटे के साथ कुछ होता है तो माँ को कुछ होता है, हमारा काम था जन्म देना, उनका काम था जन्म देना, जन्म दे दिया, अब उसका भाग्य है, वो जाएगा, वो भाग्य लेकर आइए यार आत्मा, हम चाहे कुछ भी कहे, किसी को कुछ बनाना चाहे, बना सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हम। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे सेंटर पर आने वाले, संडली पर बैठ के जिन्होंने मुरलियां चलाई, जो बड़े बड़े लोगों को ज्ञान समझाते थे, छोटे छोटे बच्चे, आज वो है ही नहीं, पूरा मायावी दुनिया में है। कोई तो छोटे छोटे है, अभी हमको पता चला उनकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, हमने कहा वो तो इतना छोटा सा था, और कोई कोई तो विरोध में चले गए, किसी को कुछ बता नहीं सकते, माँ बाप को इतना गर्व था, हमारा बेटा हमारी बेटी, ये देखो कितना ज्ञान सुनाती है। बाद में इरिटेबिलिटी, क्या 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 चालू हो गया, वो उनके दोस्त अलग, उनकी दुनिया ही अलग। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दैहिक आकर्षण, ये सारी देह की ब्यूटी जो है ना, सब नष्ट होने वाली, कुछ नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल माया, ये सबसे बड़ी माया है इस समय, ये सबसे बड़ी नींद है, डिजिटल स्लीप, सोते रहता है व्यक्ति। आध्यात्मिक रीति से सोते रहते हैं। कल भी एक पेशेंट आई थी, कह रही थी हमारी, उसकी मम्मी भी साथ में थी, कह रही थी माता मम्मी पूरे रात भर सीरियल देखती रहती, और वो भी लाइट बंद करके, मोबाइल में आंखें आंखें उसकी ये हो रही है, इसको कुछ समझाओ, और बीपी बढ़ रहा है, और सीरियल्स में भी कितने, क्योंकि आप दूसरी कहानी में इन्वॉल्व हो रहे हो जो कि काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है, उसका वास्तविक जीवन से बहुत कम संबंध है, उसमें बहुत सारा मसाला डाला हुआ है, वास्तविकता बिल्कुल ना के बराबर है, उसमें जो इमोशंस और जो बातें बताई जाती है वो एंटरटेनमेंट के लिए, पर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं दुखी, और फिर और वो उसमें एक एडिक्शन है, क्योंकि सीरियल जो होता है एक एंड जहाँ होता है, क्लाइमैक्स में एंड होता है, ताकि उत्सुकता बनी रहती है अगला एपिसोड में क्या है, अगला क्या है, जैसे एंड होगा पीछे हाथ रखा, अब किसने हाथ रखा, टू बी कंटिन्यूड, अब वो नहीं दिखाएंगे। कहानी है छोटी सी, पर उसको खींचा तान करके 400 एपिसोड, 1000 एपिसोड, वो एडिक्शन है, बहुत भयंकर वाला एडिक्शन। सीरियल्स, सीरियल देखने हैं ना, तो ये सृष्टि के ड्रामा पर चल रहे सीरियल्स को देखो, यहां भी तो कितने नाटक चल रहे, इधर ही चल रहे कितने सारे नाटक ही नाटक, सीरियल्स ही सीरियल्स चल रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स एक माया है। अगला फैमिलियरिटी, किसी से घनिष्ठता, बहुत ज्यादा ही हिल मिल जाना, घुल मिल जाना, दोस्ती कर लेना, चाहे स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप ही क्यों ना, उसमें भी माया है, क्योंकि उसमें आदान प्रदान है, उसमें लेन देन है, उसमें इच्छा है, एक्सपेक्टेशंस है, जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो। इलेक्ट्रॉन, फैमिलियरिटी। बाबा मुरलियों में यही शब्द यूज किया है बाबा ने, फैमिलियरिटी में नहीं आओ, बस काम से काम। बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी से। ये कुमार बहुत अच्छा है, ये कुमारी बहुत अच्छी है, ये सेवाधारी बहुत अच्छा है, ये ट्रैप है। इसने अरे तुमने जो भोजन बनाए ना, वो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाई। अगर ऐसा किसी को बोल दिया तो वो व्यक्ति फिर से लेके आएगा। अगर उसको पता चल गया आपको वो चीज़ पसंद है तो गए काम से, पीछे ही पड़ जाएंगे फिर तो। आपने कहा था ना आपको ये पसंद है, तो आपके लिए लेके आए। फैमिलियरिटी, उसके बाद में फैशन, नई नई फैशंस, अलग अलग फैशन, बीके फैशंस, वाइट ड्रेस में वैरायटीज, बीके फैशन शॉप, बीके फैशन, और उससे भी आगे स्टेप बीके मैट्रिमोनियल वेबसाइट। हमारी कन्या है उसकी शादी करानी है, पर शादी किससे करनी है? ऐसा कुमार चाहिए एकदम पक्का बाबा का बच्चा, अनन्य कुमार, उससे करानी है। ऐसे लिंबू टिंबू वाले से नहीं, ऐसे हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं चाहिए बच्चे के लिए, बिल्कुल पक्का अमृत वेला, सारी धारणाओं पे जो चलने वाला। ऐसे कुमारों की माँ बाप को तलाश है, कौन से माँ बाप? ज्ञानी माँ बाप। किसके लिए तलाश है? अपनी अनन्य कुमारी बेटी के लिए। उसकी अलग से वेबसाइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, और उसमें बेटी का फोटो भी अपलोड कर रखा है, बीके ड्रेस में बैच लगाया हुआ। ये फैशन, नई नई फैशंस। अगला फूड, ये तो बहुत बड़ी माया है, डूबा हुआ है संसार फूड में, छोक वाटिका में। वो अशोक वाटिका, शोक वाटिका, और ब्राह्मण है संगम युगी ब्राह्मण, छोक वाटिका में हर व्यक्ति चावल को छोक लगा रहे हैं, हर चीज को छोक लगा लगा के, तेल में घुसा घुसा कर उसको, तड़का डाल डाल के, ठेचा तड़का, और उसमें लाल पीला कलर डाल के, सफेद पसंद नहीं आता है चावल, ऐसी सिंपल वाली दाल में क्या मजा है, उसमें तरह तिखट लाल दिखना चाहिए पूरा, ऐसा तेल तैरते हुए दिखना चाहिए। वो है विषय सागर वैतरणी नदी, ये है तेल सागर नदी जिसमें ब्राह्मण है। तो ये फूड, ये भी एक निद्रा है। किस लिए जी रहे? खाने के लिए या जीने के लिए खा रहे? ये प्रश्न पूछना है अपने आप से। और ये इतने सस्ते नहीं है भोग, भोग की कीमत रोग से चुकानी पड़ेगी, भोग की कीमत रोग से चुकानी पड़ती है। भोग इतने आसान थोड़ी ना है, खा लिया और बहुत बहुत अच्छा लगा, वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आते हैं। अगला है फेम, नाम मान शान प्रसिद्धि। इस मुरली में बाबा ने कहा है ईश्वरीय लॉ क्या है, जो सिद्ध करता है वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, ये ईश्वरीय लॉ है। इस मुरली में कहा है, मेन लाइन है इस मुरली। तो फेम की इच्छा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, सब लोग मुझे जानने लगे, मानने लगे, सुनने लगे, ये सब जो है ट्रैप है, बहुत बड़ा माया। द डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, द डिजायर ऑफ फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो दिखावा आता है, एग्जीबिशन आता है, शो ऑफ आता है, अंदर का जो असली आदमी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आर्टिफिशियल हो जाता है, शॉप कीपिंग आ जाती है, सब बेचने लगता है। अहंकार आने लगता है। उसके बाद में गॉसिप्स, ये भी एक नींद है। गॉसिप्स अर्थात झरमुई झगमुई, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, तुमने सुना है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये भी बहुत बड़ी नींद है। अगला है गफलत, गफलत अर्थात टाइम वेस्ट, गफलत अर्थात गलतियां, गफलत अर्थात भूले, छोटी 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 भूले करते रहना, बड़ी 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 भूले करते रहना, छोटी छोटी भूले बड़ी 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 भूलों की तरफ ले जाएगी। अवज्ञा करना, अमर्यादाओं पर चलो, अमर्यादा है, अवज्ञा है, गफलत। अब गफलत नहीं करो, शांति स्तंभ पर लिखा है, समय कम है। और लास्ट में है एक और नींद है, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, इसको बाबा कहते हैं छुई मुई। छुई मुई अर्थात नाराज होना, रूठना, उदास होना, बात बात पर मुंह फुलाना, किसी ने कुछ कह दिया, ये कांटों का जंगल है। और सब क्या लेके खड़े हैं? कांटे, स्वयं भी और कांटे लेके, चुबाएंगे नहीं क्या? चुबाते रहेंगे। तो ये सोचना कि यहां मुझे कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना कमजोर नहीं हो जाना, HSP नहीं बन जाना, छुई मुई नहीं हो जाना, टच मी नॉट ना बन जाना, इतना सेंसिटिव नेचर नहीं हो जाना है। यहाँ तो अपने नेचर को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, चिकना घड़ा भव। छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये मार्ग तो सब कुछ निंदा स्तुति जय पराजय, सिद्ध प्रज्ञ योगी बनने का मार्ग है। इसलिए कोई कुछ ना कहे ये नहीं हो सकता है। और जितने धर्म स्थापकों को देखो, सबको सहना पड़ा, जितने इन्वेंशन करने वाले लोग हैं उनको भी सहना कर। इस संसार में दो पवित्र आत्माएं आई है, एक वो जो धर्म स्थापक और दूसरी इन्वेंशन करने वाली, जिन्होंने आविष्कार किया चीजों का। उनकी मंशा बहुत प्योर थी और वो बहुत प्योर आत्माएं थी, क्योंकि उस प्योरिटी के आधार पर ही उन्होंने इन्वेंशन की। परंतु बाद में जो दो आत्माएं उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, वो एक अलग बात है। तो उनको भी बहुत सहना पड़ा। आप अगर मेडिकल का इतिहास स्टडी करो, मेडिकल साइंस का, उसमें पैरासेल्सस, ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ये सब बनाया, कितनों कितनों ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए और बाद में संसार, और कितनों का तो इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि कितनों को मार दिया गया। ये कहां से थियरी लाई बैक्टीरिया की, वायरस की? ये तो सारे बीमारी हो रही है दैवी प्रकोप के पर कारण, तुमने ये कहां से लाया माइक्रोस्कोप? और उनको सजा दी गई, किसी को मार दिया गया, सबको सहन करना पड़ा। तो ये हो नहीं सकता कि इस दुनिया में हम रहे और कोई कुछ ना बोले। सुकरात ने क्या किया? उसको जहर पिला दिया। मंसूर को क्या कर दिया? मंसूर के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, सूली पे एक एक टुकड़ा, एक एक शरीर के अंग अंग टुकड़े टुकड़े कर दिए। जीजस को क्या किया? सूली पे चढ़ा दिया। जो जगाता है ना, वो सोने वालों को पसंद नहीं आता है। वो काटते किसको है? मुर्गे को। क्यों, क्या करता है वो? दोष क्या है मुर्गे का? जो जगाता है क्योंकि जब हम गहरी नींद में हैं, सोचो हम सो रहे और कोई आके कहे उठो उठो, तो उसको प्यार करते हैं क्या? हम प्यार करते हैं? और भगवान ने वही तो काम किया है, इसलिए आधे लोग तो भगवान के विरोधी बन गए थे, क्योंकि उसने जगाने का काम किया ना, उठो जागो, ये विकार निद्रा है, ये भोग विलास निद्रा है, ये सब निद्रा के प्रकार है। तो कितने देखे हमने? 12। पहला आलस, एक बहुत गहरी नींद है, इससे बाहर निकलो, ये निशानी है। इस मुरली में भी कहा है बाबा ने, आलस और अलबेलापन। दूसरा बहानेबाजी, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। कहानी नहीं बनाओ, बहाने मत बनाओ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, ये है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। दैहिक आकर्षण, इसकी अनित्यता, उस दिन देखा ना हमने अष्ट भुजा, वो बाहुबली अष्ट बाहु ऑक्टोपस ऑक्टोपस ABCD वाला, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इसका बहुत अच्छा है, प्रयोग करो, सब कुछ यूज करो, परंतु जैसे काम हो गया बंद। गूगल के अंदर प्रवेश करना आना चाहिए तो बाहर निकलना भी आना चाहिए। प्रवेश करना आता है पर निकलना नहीं आता है। यूट्यूब में प्रवेश करना तो आता है पर निकलना नहीं आता है। चक्रव्यूह है वो। अगला फैमिलैरिटी, काम से काम, ना भाई देखो ना बहन, ना मेल ना फीमेल, एक्सीडेंट। फिर फैशन, ये फैशन से कुछ नहीं मिलने आए, दिखावा है ये। और फैशन करते कौन है? सुंदर किसको बनना है? मतलब सुंदर नहीं, फूड, फूड पर संयम। जिसने फूड की इच्छा को कंट्रोल में नहीं रखा है वो बहुत भटकेगा, क्योंकि जो भोजन बनाएगा उसमें फंस जाए, जो भोजन बनाएगा उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, फिर उसको रिटर्न में कुछ देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतनी सारी बातें जुड़ी हुई है। बीमारी तो एक बात है केवल, दूसरे और बहुत सारे बंधन है। चोरी करता है व्यक्ति, झूठ बोलता है, इसके लिए चाहिए खुद के लिए, और कहेंगे वो सेंटर के लिए थोड़ी टोली। छोटे छोटे झूठ भोजन से जुड़े हुए हैं। पेट तो पापी पेट, नाम ही क्या है संसार में, पापी पेट का सवाल आज का है। पेट क्या कराता है? पाप कराता है। पाप का रास्ता ये इधर से चालू होता है। अगला फेम, कौन सा फेम, कैसा फेम? भगवान को बस, बस भगवान देख रहा है, यहाँ के लोग देखे ना देखे, और ये देख के भी क्या करेंगे, ये लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। संसार के लोग आज याद है कल भूलते हैं। फिर गॉसिप्स, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ये नींद है। फिर गफलत, और लास्ट सेंसिटिव नेचर। तो ये हो गया ब्राह्मणों की नींद। इस मुरली में बाबा ने कहा है लिस्ट निकालो, इसी में कहा है लिस्ट निकालो, नींद की लिस्ट निकालो, कहाँ कहाँ सोते हो, जागती जोग ज्योत बनो, अथक बनो, ब्रह्मा का उदाहरण, ये सब बताए। दूसरा, दूसरी जो मुरली है वो बहुत, उसमें काम जो करना है वो 10 लोगन बनाने हैं आज। कुछ दिनों से हम मुरलियों पर, अव्यक्त मुरलियों को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? साकार मुरलियों को। पहले दिन प्रश्न उत्तर बनाए, फिर वरदान बनाए, फिर मीठे बच्चे महावाक्य बनाया, आज क्या बनाना है? स्लोगन्स। तो स्लोगन्स छोटे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये सारी मुरली है परिवर्तन शक्ति पर। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य परिवर्तन, विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। एक सेकंड में परिवर्तन करो, दृष्टि को परिवर्तन करो, वृत्ति को परिवर्तन करो, संबंध संपर्क को परिवर्तन करो, शुरुआत ही वहां से है। एक सेकंड में करो, ये नहीं कर सकते, परिवर्तन शक्ति वगैरह वगैरह। तो इस मुरली से क्या करना है? 10 स्लोगन बनाने हैं, ठीक है। अब दूसरा, एक जो चीज हम कई दिनों से कह रहे हैं कि, और आज का होमवर्क जो अमृत वेले की चेकलिस्ट है 11 पॉइंट्स की, अमृत वेले की जो चेकलिस्ट है 11 पॉइंट्स की, उस पर आज कमेंट्री लिख के या तो ऑडियो, वो थोड़ी लंबी होगी 7-8-9-10 मिनट की, क्योंकि उसमें 11 के 11 पॉइंट्स आने चाहिए। आज किया सबने 11? अच्छा 12 से करना है, 12 के लिए वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं, इंतजाम करो। तो उसमें एक बात है जो हमने कही थी, 5 प्रकार की सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, प्रकृति की सत्ता, और 5वीं थी लौकिक ज्ञान की सत्ता। तो उसमें आज बता रहे, जो पिछले 3 दिन से बोल रहे देखेंगे देखेंगे, उसमें 7 बातें हैं। कौन कौन सी 7 बातें? जो लौकिक ज्ञान की सत्ता है उसमें सबसे पहला है नेचुरल साइंसेस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ये सब आएगा। एक है धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता, ये है लौकिक ज्ञान की सत्ता। उसमें सबसे पहले है नेचुरल साइंसेस, उसमें ये सारा आएगा, फिजिक्स आएगा, ये थोड़ा ओवरलैपिंग है साइंस की सत्ता के साथ, पर इसमें बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष विज्ञान, ये सारी चीज़ें, जियोलॉजी, धरती का शास्त्र, मैथमेटिक्स, मेटेरोलॉजी, ये सब चीज़ें। दूसरा सोशल साइंस है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तीसरा है अप्लाइड साइंस, उसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। तीसरा है फिलोसॉफी, चौथा उसमें लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज, ये सारी सत्ता, मतलब म्यूजिक से संबंधित सारे लोग उसमें आपके वो सब आ गए फिर, हॉलीवुड बॉलीवुड, म्यूजिक से संबंधित सत्ता। अगला है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और लास्ट है पॉलिटिक्स और लॉ, लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो ये सात क्या है? लौकिक ज्ञान की सत्ता। ठीक है, तो आज का होमवर्क नंबर वन, ये जो 11 पॉइंट्स है अमृतवेला चेकलिस्ट के, उस पर या तो कमेंट्री लिखो और जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो करो। तो उसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले पांच इंद्रियों को सकाश, और ये सकाश का जो कार्यक्रम है अमृतवेला, शुरुआत यहाँ से नहीं करना है, नहीं, पर शुरुआत पहले तो बाबा से जोड़ने से करना है। पहले योग, वो सारे योग जो बोले थे ना, बाबा से रूरियान, दृष्टि, वरदान, वो सारा बाबा से संबंध, सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये लास्ट 10-15 मिनट्स अमृत वेला करने हैं। शुरुआत ही सकाश से नहीं करनी है, वैसे कर सकते हैं, बट पहले शक्तियां तो लो, सीधा देना नहीं चालू करना, पहले लो। चलो अगर भरी है तो बहुत अच्छी बात, कभी भी दे सकते। बाबा ने तो कहा रात में जब नींद खुलती है सकाश दे दो और सो जाओ, यहां तक बोला है। तो देखो इर्द गिर्द कौन है, अच्छा सकाश दे दो और फिर सो जाओ वापस, जल्दी खुलती है। तो सबसे पहला शरीर को सकाश दे दिया, फिर पांच तत्वों को सकाश, और इसका क्रम आप चेंज कर सकते हो, जो करना है करो। कभी पांच तत्व, कभी पांच खंड, कभी पांच आत्मा है, फिर ब्राह्मण आत्मा है, पांच ब्राह्मणों के स्थान, बाहर के स्थान, और क्या है, पांच सत्ताएं। पांच सत्ताओं में ये कितनी सारी एडिशन हो गई आज, आर्ट, म्यूजिक, बिजनेस, ये मार्केट्स, होटल्स, एमबीए वाले, कितने मैथमेटिक्स वाले, फिलोसॉफी वाले, कितने सारे एडिशन है इसमें, नो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी वाले, ज्योतिष शास्त्र, वो सब आ गया इसमें सब, वो सबको। तो धर्म सत्ता, उसके पांच सत्ता है, फिर पांच विकारों को भस्म कर दो। अगर एक को ही करो तो कितना अच्छा, आधा 10-15 मिनट तो निकल जाएंगे। काम को भस्म करो, क्रोध को भस्म करो, और पांच प्रकार की आत्मा, ये कितना अच्छा योग है, आत्माएं कितनी दुखी है, और वो वाला तो सबसे पावरफुल है, पांच प्रकार की विशेष आत्माओं में से तीसरा नंबर, जिससे नहीं चौथा नंबर, जिससे ज्यादा कर्म बंधन है, वो एक पर्टिकुलर आत्मा है जो सबसे बड़ा कर्म बंधन है, उसको विशेष सकाश। और पांचवें नंबर का भविष्य में आने वाली आत्मा है निखिलेश भाई, उसके कुछ आप और कैटेगराइज करने वाले हैं, उसमें क्या क्या प्रकार हो सकते, कौन कौन आत्माएं आने वाली है जो हिसाब किताब चुकतू करेगी, वो एक दूसरा विषय है। वो इसमें आएगा धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, और ये इसमें ये वाली जो सत्ता है लौकिक ज्ञान की सत्ता वाले। दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, राह से भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए। हाँ एक ही है, एक जो शरीर में है और एक जो शरीर से बाहर है, दो प्रकार की आत्मा है जो भटक रही है, शरीर में और शरीर से बाहर वाली। तो आज का सबसे पहला होमवर्क है ये ब्राह्मणों की निद्रा 12 प्रकार, दूसरा होमवर्क है 10 लोगन निकालने, और तीसरा होमवर्क है वो कॉमेंट्री लिखो या तो बनाओ, बहुत लंबी नहीं बनानी है क्योंकि इतना बड़ा है वो, तो 5-10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा कुछ, हाँ चांद वो नींद कर रहा है। दस लोगन कमेंट्री पर, तीसरा ये नींद, इसको रिवाइज करने हैं 12 प्रकार, ABCDEFGH सुनाएंगे। हाँ
ओम शांति। शरीर का नाम रूपाली मनियार, महाराष्ट्र परभणी से हूँ। मैं एंजल ऑफ शिवा से, अनेक भट्टियों से जुड़ी हुई हूँ, प्राणिक भट्टी से जैसे शुरुआत की थी, तो इस भट्टी से हमको राइटिंग, स्केलिंग, पेंसिल, मतलब स्टूडेंट लाइफ हमने एंजॉय की है। इस लाइफ जो इतने सालों से हम पेंसिल का यूज़ सिर्फ मुरली के दौरान करते थे, तो अब हमको इतने यूज टू हो गए हैं कि भाई मुरली में भी हम नोट्स भी बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे कि मेरे युगल सोनोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, और बेटी फर्स्ट UID में पढ़ रही है, छोटी बेटी नीट कर रही है, तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे अहमदाबाद आई हूँ। युगल को तो यही बोल के आई हूँ कि मैं बेटी को मिलने जा रही हूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट अलाउड मी टू कम फॉर दिस ब्रह्म कुमारीज। बाकी तुम कहीं पे भी जाओ, सिर्फ हमें ब्रह्म कुमारीज छोड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा युगल का था कंसर्न, अदरवाइज ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। दीदी लोगों की सोनोग्राफी और सिटी स्कैन तो फ्री में करते हैं, ये सेवाएं तो वो देते हैं। ये भेज दे, बल्कि मैं तो बोल रही थी इसका हम रिकॉर्डिंग ही नहीं लेंगे ताकि उनको पता ही नहीं चले। तो मुझे इसमें भर्ती में जब हम क्लासेस अटेंड करते ना, तो भाई जी की वो बात मुझे बार बार आज भी उन्होंने कहा कि जिसको तुम चाहो उससे कुछ ना चाहो, तो इससे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो रही थी फैमिली के हद तक। और भाई जी के हर क्लास को मैं इतना केयरफुली सुन के उसको दैनंदिन लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही थी, यूज़ कर रही थी। भाई जी ने जैसे कहा ना कि तुम बाबा के गोद में छुप जाओ, तो ये जब मेरा प्रोग्राम बना यहाँ आने का, उस टाइम मैंने बार बार यही रियलाइज़ किया कि मैं बाबा के गोद में छुप गई हूँ और बाबा मुझे बचा रहे हैं और मेरा यही प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। सेकेंडली, बार बार संकल्प तो था ही कि कैसे मधुबन आऊँ, कैसे ये लाइव क्लास अटेंड करूँ, बहुत दिनों से इच्छा चल रही थी। तो इस ड्रामा और सभी यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर मैं कहना चाहूँगी कि अव्यक्त क्रांति से जुड़ने के बाद मैं पूरी तरह ही अपने लिक्विड डाइट पे फॉलो हो गई थी। तो भाई जी ने जो क्लास में बताया कि किस तरह हमारे डिवाइन सोल की बॉडी होनी चाहिए, A to V के जो पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें से आई थिंक मेरे 70% तो पॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो बाहर चीज़ों का हमको कोई चीज़ बीमारी हमको रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, ये सब चीज़ें भाई जी के क्लास से हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और हम उसको फॉलो करते गए। सेकेंडली, भाई जी ने ये भी बहुत हर टाइम हम लोगों को अलग अलग क्रांतियों के माध्यम से कैसे हम अपने आप में चेंजेस ला सकते, चेक एंड चेंज, छोटी छोटी बातें हम कैसे अपने लाइफ में, एक छोटा सा भाई जी ने जो जार बनाना सिखाया था, लव जार, अमृत बेला, वो भी हम डेली करते हैं। फिर वाइल पानी पीते समय मेडिटेशन, पानी को चार्ज करके मेडिटेशन भी करते हैं। फिर कोई भी मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का आह्वान करना और फिर खुद को अफर्मेशन से भरपूर करना, और फिर बाद में मुरलियों का आह्वान करके उसमें विदाउट लिपसिंग एंड वाइल जो म्यूज़िक बजती है वो म्यूज़िक के साथ रीडिंग करना। ये छोटी छोटी टिप्स अलग अलग लोकेशन मेथड से, उस मेथड से कैसे अव्यक्त वाणियों को हम दिमाग में रख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। सो थैंक यू ऑल एंजल ऑफ ग्रुप, भाई जी जो क्रांतिकारक के रूप में हम सबके लिए आया है। सो सैल्यूट टू ऑल एंजल ऑफ ग्रुप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह हमारी एक रिक्वेस्ट थी, जो भाई जी के पेंडिंग प्रोजेक्ट है, जैसे उन्होंने बताया था कि गीता पे और 7 डेज का कोर्स डिटेल, उसका तो हमें इंतज़ार रहेगा। सिर्फ हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने ज्ञान तो हमें, ज्ञान में तो बहुत परफेक्ट, मतलब इतनी लगन से हम बैठ रहे, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ कि हमको आप योग की तरफ भी ज़्यादा ले जाए। आपने जैसे अशरीरीपन का हमको अभ्यास बहुत सिंपल से बताया कि सिर्फ ब्रीदिंग को कॉन्सेंट्रेट करो, तो हमारी यही इच्छा थी कि आप लाइव क्लास भी उसके लिए स्पेशली लो, तो हमारे लिए वो थोड़ा सरल हो जाएगा। थैंक यू भाई जी, थैंक फॉर दिट, ओम शांति।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में तुम सा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। तेरे एहसान का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ।